मेरे आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत मैं आज आप सबसे जो कठिन प्रश्न होते हैं उनके साथ आपको कैसे निपटना चाहिए इस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जो यूनेस्को है, यूएनओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, आप जानते होंगे, उन्होंने वेस्ट बंगाल में, स्पेशली कैलकटा शब्द दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा उत्सव जो मनाया जाता है उसको अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसमें कहा क्या गया है, जो सबसे बड़ी बात है उसके तहत, वो ये है कि कहा यह गया है कि देखिए, जब कभी भी दुर्गा पूजा मनाते हैं, जब आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, आप शामिल भी रहे होंगे, और कलकत्ता के दुर्गा पूजा में तो मैं कई बार शामिल भी हुआ हूं, ये मैं बात बता रहा हूं आपको 1975 से 80 के बीच में, इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो है इसका सर्व समावेशी होना। न यहां धर्म का बंधन है, न यहां जाति का बंधन है, न यहां वर्ग का बंधन है, किसी का बंधन नहीं है, सब आइए दुर्गा उत्सव में शामिल होइए। आध्यात्मिकता भी है यहां, आपको बकायदे सजावट भी मिलेगी, बकायदे कलाकृति के रूप में देवी की मूर्तियां हैं वो देखिए, हर तरह की चीजों का समावेश, कलाकारों का समावेश है, नृत्य का समावेश है, गायन का समावेश है, आध्यात्मिकता का समावेश है, इसका भी समावेश है। अद्भुत उत्सव, और आप देखिए कि किस तरह से जो दुर्गा उत्सव है अब केवल कलकत्ता या पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रह गया है, देश के दूसरे भागों में भी उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाने लगा है। दोस्तों, कैबिनेट ने एक और विधेयक को स्वीकृति दी है। एक विधेयक के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है, उम्र है, उसे बढ़ाया जा रहा है। एक और विधेयक को स्वीकृति दी गई है और इसका संबंध सीधे सीधे आप यूं कह सकते हैं चुनाव सुधार से है। व्यवस्था ये की जा रही है कि जो आपका जो वोटर कार्ड होता है, मतदाता जो आप होते हैं, तो जो मतदाता का जो पहचान पत्र है उस आपके पहचान पत्र को आधार का से जोड़ दिया जाए, आपके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, आधार नंबर से जोड़ दिया जाए। चुनाव आयोग ने खुद इसके बारे में सिफारिश की थी, सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। देखिए, एक बार अगर वो आधार कार्ड से जुड़ जाएगा आपके आधार नंबर से, तो फिर जो फर्जी मतदान होते हैं उन पर काफी कुछ रोक लग सकेगी, ट्रांसपेरेंट भी ये हो सकेगा। अब आप देखिए कि इसमें मामला क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा मामला है जिस पर आशंका व्यक्त की जा रही वो है निजता के अधिकार को लेकर। लोग ये प्रश्न उठाएंगे कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे निजता के अधिकार की रक्षा की बात कही है, अब कैसे किया जाएगा। तो लेकिन फिलहाल एक बात है जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि ऐसा करना स्वैच्छिक होगा या अनिवार्य नहीं होगा। आगे फिर देखते हैं कि किस तरह की बहस होती है, किस तरह के प्रश्न उठते हैं जब इस पर कानून बनाया जाएगा, तो किस तरह की बातें होती हैं, ये आगे चल करके अब उसे देखेंगे। लेकिन फिलहाल यह सामने आ रहा है और इसे यूं कह लीजिए कि चुनाव सुधार की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। फ्रेंड्स, 16 तारीख को यानी कि कल गुजरात के आणंद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप यूं कह लीजिए कि शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है। वो शिखर सम्मेलन कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित था, जिसके समापन समारोह को हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। उन्होंने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। पहली बात तो ये है कि जैविक कृषि के बारे में बात कही उन्होंने कि हमें अब जैविक कृषि की तरफ लौटना चाहिए, यानी रासायनिक खाद और कीटनाशक जो हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं, इसके दुनिया भर के नुकसान है, आप जानते हैं, स्वास्थ्य की हानि होती है, हमारी जो जमीन है, जो मृदा है, कह लीजिए मिट्टी, वो अपनी क्षमता खोती जा रही है, वो ऊसर होती चली जा रही है, पर्यावरण पर भी बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं, और किसान इसके बाद भी किन स्थितियों में है आप देख रहे हैं, उसे कोई लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी जो लागत है वो बढ़ गई है, रासायनिक खाद खरीद रहा है, कीटनाशक दवाइयां खरीद रहा है, तो उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। इस पर प्रधानमंत्री जी ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला तो यह है कि अगर हम जैविक कृषि की तरफ जाएंगे तो इससे छोटे किसानों को लाभ होगा। आप जानते हैं कि भारत में 80% से अधिक किसान छोटे किसान हैं, क्योंकि उन्हें अब रासायनिक खाद कीटनाशक इनके लिए धन खर्च नहीं करना पड़ेगा, और बकायदे गोबर और खासकर जो दूसरी पद्धतियां होती हैं खाद बनाने की, उनसे खाद तैयार कर लेंगे, खेतों में उसका इस्तेमाल करेंगे, जैविक पद्धति से कृषि करेंगे और बकायदे उनकी आय बढ़ जाएगी, छोटे किसानों की खासकर। दूसरी बात उन्होंने कही बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक कहने का मतलब है कि अब किसानों को हमारे जो मूल चरित्र रहा है कृषि का, उसकी तरफ लौट जाना चाहिए। बैक टू बेसिक यानी इसे भी आप जैविक कृषि ही करना कह सकते हैं, क्योंकि भारत में कृषि को लेकर के बहुत चिंतन हुए हैं और कहावतें और मुहावरों के रूप में बातें प्रचलित हैं। मैंने आप लोगों को कल एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था, खेती के तौर तरीकों में बदलाव का वक्त, जो हमारे राजीव कुमार जी हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग की एक वरिष्ठ सलाहकार हैं नीलम पटेल, उन दोनों ने सम्मिलित रूप से लिखा था। ये बेसिकली जैविक कृषि के ऊपर ही है कि कैसे अब हमें अपने खेती की प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा आर्टिकल है। देखिए नीति आयोग के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने लिखा है। ये अकेला आर्टिकल आपके जैविक कृषि पर एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार करा सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसके आधार पर अपना एक अच्छा खासा सुंदर सा नोट्स भी तैयार कर लें कि जैविक कृषि से क्या क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान हो रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने फिलहाल हैं। इस तरह के 2-3 सब पॉइंट दे करके और उनके आधार पर आप जो और उससे संबंधित जो तथ्य हो सकते हैं वो ले लें। मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह आर्टिकल मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। फ्रेंड्स आज मैं आपको एक शब्द के बारे में बताना चाहूंगा, वो है पार्कर यान। ये पार्कर यान क्या है? नासा ने छोड़ा था और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पार्कर यान सूर्य की दहलीज को पार करते हुए उसके कोरोना में प्रवेश कर गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सूर्य में कोई प्रवेश कर जाए कोरोना में। कोरोना का मतलब है सूर्य का जो बाहरी हिस्सा है उसमें वह एंटर कर गया है। बहुत ज्यादा इस पर फिलहाल मैं बात नहीं करना चाहूंगा। खासकर इस यान से जो आंकड़े मिलेंगे उसकी मदद से सूर्य और पृथ्वी के बीच जो संबंध हैं, उसके कई जो रहस्य हैं, उनको जानने में मदद मिलेगी। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो पार्कर नाम रखा गया है वो कैसे रखा गया है। जो सुपरसोनिक सोलर विंड है, जिन्हें हम सौर हवाएं कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसका सिद्धांत दिया था अमरीकी वैज्ञानिक यूजिन पार्कर ने, और उन्हीं के नाम पर इस यान का नाम पार्कर रखा गया है। तो बस पार्कर यान का संबंध सौर मंडल से है। आपके सौर मंडल से तो नहीं कहना चाहिए, गलत हो जाएगा, सूर्य से है। सौर मंडल में तो ढेर सारे दूसरे भी ग्रह आ जाते हैं, सूर्य से है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। दोस्तों अब मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे कठिन प्रश्न जो होते हैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूं, और इसके लिए मैं जो आधार ले रहा हूं वही जो प्रश्न मैंने आपको इससे पहले दिया था, खासकर जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों की बात है और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बात है। इस पर आप लोगों की बहुत प्रतिक्रिया मिली और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप सबके सामने मैंने जो स्थितिगत एक नीति की बात कही थी उसको आप लोगों ने समझा और उसके आधार पर आप लोगों ने अपने अपने ढंग से लिखा भी। और मुझे इस बात का आत्मसंतोष है कि जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत सटीक तरीके से इसके बारे में अपना विश्लेषण किया है। अगर आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो मैंने उस समय कुछ इस तरह की बात कही है, मुझे ध्यान आ रहा है कि जो मताधिकार दिए गए थे उनके आधार क्या थे, है ना, कि इतना आपको टैक्स देना चाहिए यानी कितनी आय होनी चाहिए, इतनी एजुकेशन होना चाहिए, ये आधार थे, है ना। 21 वर्ष और का जो मामला है ये तो हमारे देश की आजादी के बाद का मामला है। तो आप सबने बहुत अच्छी बात कही। अब देखिए हम इस पर आते हैं कि इस प्रश्न को हम कठिन की श्रेणी में माने या सरल की श्रेणी में। सीधे सीधे आपको इनके उत्तर नहीं मिले होंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में जितनी भी प्रतिक्रियाएं आप लोगों की मिली हैं वो सब की सब सही हैं। सब ने बिल्कुल इसे गलत ठहराया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 1919 में वो इस तरह की रिकमेंडेशन करे कि 21 वर्ष से आयु की जो महिलाएं अधिक है की हैं उनको मताधिकार दे दिया जाए। जब आधार ही दूसरे हैं तो फिर देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपकी मदद के लिए इसमें उन्होंने 21 वर्ष शब्द का प्रयोग किया है। एक बार मताधिकार दे दिया जाए या और अधिक आयु 30 वर्ष कर देते तो वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन 21 वर्ष तो थोड़ा सा दिमाग चौंकता है। तो आप सब ने कहा कि यह स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल यह गलत है। लेकिन जो 1935 का जो स्टेटमेंट है यह बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर आप स्थितिगत को लेकर के चलेंगे जैसा कि आप लोगों ने किया है तो यह स्टेटमेंट भी गलत है, और आप बिल्कुल इस पर निशान लगा देंगे कि यह स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि एक और दो दोनों गलत है, न तो एक और न ही दो, जबकि दोस्तों यह स्टेटमेंट सही है। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट सही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसमें जो बात कही गई है वह आम पुस्तकों में आपको पढ़ने को नहीं मिलती है। अब कोई भी किताब उठा करके देख लीजिए, मैंने बहुत सी किताबें उठा करके देखी, उनमें मुझे यह पढ़ने को नहीं मिला कि ऐसा किया गया है। लेकिन जब आप 1935 के एक्ट का ओरिजिनल उठा करके देखेंगे तो उसमें एक लाइन मिलती है कि इस तरह से सेवंथ शेड्यूल में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है विधानमंडलों में, केवल एक लाइन है। अब उसको हमारे जो टेक्स्ट बुक लिखने वाले जो विद्वान हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, उन्होंने नहीं लिया है, शायद उनको वह उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा हो, राइट? तो ये प्रश्न कठिन हो जाता है। स्थितिगत आधार पर आप इसे गलत करके आएंगे, तो अब आपको करना क्या चाहिए? देखिए, करना यह चाहिए कि यह प्रश्न कठिन है, तो कठिन प्रश्नों के साथ दो स्थितियां होती, या तो हम उसे बिल्कुल छोड़ दें या हम उसे हैंडल करने की कोशिश करें। जब आप इसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो आप 50% तक पहुंच जाते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को आप रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन चूंकि इसमें दो ही कथन है तो आपके जो विकल्प दिए गए उस विकल्प से आपको कोई मदद नहीं मिल रही है कि जिसमें एक हो से आप रिजेक्ट कर दें, वो स्थिति आपकी मदद के लिए यहां नहीं बन पा रही है। तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं और आप इसे हैंडल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहूंगा वह यह है कि यदि आपकी संभावनाएं 50% की बन गई हैं तो फिर आपको उसे टेकअप करना चाहिए। कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए, अगर गलत हो गया तो आपके 0.33% मार्क्स ही कटेंगे, और अगर सही हो गया तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। यह तो ठीक है कि इसमें आपको विकल्पों के आधार पर कोई मदद नहीं मिल पा रही है, लेकिन दूसरे में आपको विकल्पों के आधार पर मदद मिलेगी, उसकी संभावनाएं बनती हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊपरी तौर पर सरल सा दिखाई देने वाला ये प्रश्न अंदर से कहीं ना कहीं कठिन है, लेकिन इसके बावजूद यदि आप एक स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मेरा ये कहना, या कह लीजिए मेरी सलाह है, कि आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। हम लोग और क्वेश्चंस के आधार पर बातें करेंगे, तब आपके अंदर और धीरे धीरे मैच्योरिटी पैदा होती चली जाएगी। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में होने वाली हैं, इसके लिए पटना बिहार से अभिषेक कुमार ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो अभिषेक जी आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अनीशा वर्मा झारखंड से, गंगोत्री साहू और अभिषेक राजपूत विसंगपुरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा अभिवादन और मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।